शिविर में करणानुयोग से प्रयोजन की सिद्धि ये अपना प्रकरण चल रहा था। करणानुयोग सूक्ष्म बातों का विवेचन करता है, करणानुयोग विषय की गहराई में जाकर के बात करता है, इसे धर्म कांटा भी कहते हैं। सुना होगा आपने कभी, माने जो बात करणानुयोग के माध्यम से कही गई है उस बात में रत्ती भर भी फेरफार नहीं हो सकता, बाकी सब जगह चल सकती है ये स्थिति। प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग उसमें ये हो सकता है, प्रयोजन की अपेक्षा से बात को इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन करणानुयोग में ये परिवर्तन संभव नहीं है। मैं आपको एग्जाम्पल देकर के बात कर सकता हूँ, मैं जो भी बात कहता हूँ वो सब प्रमाण से बात करता हूँ। प्रथमानुयोग की कथा कहानियों में दमी क्या है, मूल मुद्दे की बात को रखकर अपने हिसाब से उस प्रसंग को आगे पीछे कर देते। भाई प्रसंग एक है, उस एक ही प्रसंग को जिसको सुनाना है वो व्यक्ति अपने हिसाब से सुनाता है। सब आचार्यों ने इसी तरह का किया है। तो घटना भले ही एक हो लेकिन उस घटना का जो प्रतिपादन है जिसे अपन प्रथमानुयोग शैली कहते हैं वो नियम से अलग अलग होगी और उसमें कहीं ना कहीं इधर उधर भी की जा सकती है बात। इसी तरह से चरणानुयोग शैली में भी परिवर्तन संभव है और द्रव्यानुयोग शैली भी जो है वो प्रयोजन की अपेक्षा से बात करती है। इसलिए चूंकि प्रयोजन से बात करती है तो कभी कभी वो वस्तु स्थिति को भी बदल करके कह देता है प्रयोजन की अपेक्षा से। उदाहरण के रूप में यदि मैं बात करूं तो द्रव्यानुयोग ऐसा भी कह देगा कि राग तो पुद्गल का है, वस्तु स्थिति तो नहीं है। वस्तु स्थिति तो यही है कि राग चेतन की पर्याय नहीं होता है, जीव की पर्याय नहीं होता है, जड़ में तो राग नहीं होता, अचेतन में तो राग नहीं होता, पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल में तो राग का सद्भाव नहीं है। तो राग द्वेष आदि को पुद्गल कह देना ये द्रव्यानुयोग कह सकता है, लेकिन करणानुयोग नहीं कहेगा। इसका मतलब करणानुयोग जो बात करता है वो इतनी सटीक बात करता है जिसमें कहीं भी रंच मात्र भी इधर उधर होने की, हिलने डुलने की गुंजाइश नहीं हो। मैं तो यहां तक कहता हूं कि प्रथमानुयोग की शैली तो पत्थर तोलने जैसे तराजू जैसी है। पत्थर है, कोयले हैं, लकड़ियां हैं, भारी भारी ऐसे लकड़ी के गट्ठर, उनको तोड़ना हो हमारे को तो 10-20 किलो भी ऊपर नीचे हो तो चलता है। ये प्रथमानुयोग की शैली इसी तरह की है। चरणानुयोग की शैली में ऐसा नहीं चलता, चरणानुयोग की शैली थोड़ी सी सूक्ष्मता में जाती है। चरणानुयोग वाला तराजू कैसा है, दाल चावल तोलने जैसा, उसमें 10-20 किलो ऊपर नीचे क्या करोगे आप। हाँ, लेकिन 10-20 ग्राम 25-50 ग्राम चलता है। आप 100 किलो चावल तोल रहे हो, 25 किलो चावल दाल खरीद रहे हो तो 10-5 ग्राम 10-20 ग्राम इधर उधर हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें, इतना चलता है। ये चरणानुयोग की शैली है। द्रव्यानुयोग की जो शैली है वो है गोल्ड, सोना, चांदी है? इनको तोलने वाले तराजू जैसी। और जो करणानुयोग की शैली है यह है रत्न तोलने जैसी, एक सेंट भी इधर उधर नहीं। तो इतना बारीकी से जो बात करे वो करणानुयोग है, कितने सूक्ष्मता से कथन करता है। करणानुयोग की ये सूक्ष्मता यदि हमारे ख्याल में हो तो फिर केवल ज्ञान की महिमा आती है। सुबह के व्याख्यान में हमने काफी चर्चा करणानुयोग की उपयोगिता के संदर्भ में की थी। मैं कुछ करणानुयोग के विषयों को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। वैसे तो करणानुयोग में दो महत्वपूर्ण विषय हैं, एक तो है कर्म और दूसरा है त्रिलोक। करणानुयोग के जो विषय हैं उनमें इन दो बातों को ग्रहण किया जाता है। वैसे तो कई आचार्यों ने सिर्फ त्रिलोक की चर्चा को, जम्बुद्वीप, ढाईद्वीप, लोक, स्वर्ग, नरक आदि, इन चर्चाओं को ही करणानुयोग में शामिल किया है और कर्म की चर्चाओं को द्रव्यानुयोग तक में ले लिया है। किंतु चोडरमल जी की जो शैली रही उसमें उन्होंने कर्म की चर्चा, गुणस्थान, मार्गणास्थान आदि की चर्चा, इन सबको करणानुयोग में शामिल किया। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है गुणस्थान, करणानुयोग का विषय है। कैसे हमारे प्रयोजन की सिद्धि होती है, गुणस्थानों को क्यों पढ़ें, गुणस्थान पढ़ने से क्या लाभ है, गुणस्थान की चर्चा भीतरागता की पोषक कैसे हो सकती है, गुणस्थान की चर्चा को पढ़ने सुनने से हमारे प्रयोजन की सिद्धि कैसे हो सकती है। थोड़ी बहुत चर्चा गुणस्थान के बारे में करते हैं, फिर और इस तरह के कुछ विषय उठाएंगे। किसी भी गुणस्थान की चर्चा करो, उस गुणस्थान की चर्चा से उस गुणस्थान की भूमिका का पता लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमें गुणस्थान की चर्चा पढ़ने से इस बात का पता लगता है कि हमारी भूमिका कौन सी है। गुणस्थान क्या होते हैं ये जानते हैं ना आप लोग सभी, गुणस्थान क्या चीज है, गुणस्थान कहाँ होते हैं, किसमें होते हैं। अभी मुझे गुणस्थान नहीं पढ़ाने हैं लेकिन कम से कम गुणस्थान का बेसिक ज्ञान तो जरूरी है। गुणस्थानों के बेसिक ज्ञान बिना आप समयसार गहराई से नहीं समझ सकते। सामान्य जानकारी तो उसकी जरूरी है ही। किसके होते हैं गुणस्थान, कोई व्यक्ति पहली बार आए हो और हमने उनसे पूछा कि भैया आप जानते हैं गुणस्थान के बारे में, नहीं साहब जानता तो नहीं हूं। तो आपको पता है आपका कौन सा गुणस्थान है, जैसे हमारे कई तो गुणस्थान होंगे, गुणस्थान तो ज्ञानियों के होते हैं। गुणस्थान किसके होंगे? तो हमने उसको बतलाया, भैया गुणस्थान के बिना तो कोई जीव ही नहीं होता, तुम अचेतन हो क्या? गुणस्थान यदि नहीं मानोगे तो जिनके गुणस्थान नहीं होते वो तो सिद्ध भगवान होते हैं। इसका मतलब गुणस्थान तो जरूरी है, बिना गुणस्थान के कोई भी संसारी जीव होता ही नहीं है। अच्छा, तो फिर एक काम करो साहब, गुणस्थान जरूरी है तो फिर तो हमारे 14वां गुणस्थान होगा, सबसे लास्ट में डाल दो भाई। पहला नंबर थोड़ी ना होगा हमारा, हम अज्ञानी, हम कुछ पढ़े लिखे नहीं, समझदार नहीं, तो लास्ट नंबर पर हमारा नंबर होगा। अरे भैया क्या बात करते हो आप, आपका 14वां गुणस्थान? अरे 14वां गुणस्थान तो अरहंत भगवान का होता है। तो फिर साहब 13वां होगा कि नहीं? नहीं, 13 और 14 ये दो गुणस्थान ऐसे हैं जो दोनों गुणस्थान अरहंत भगवान के होते हैं। जिनके गुणस्थान नहीं होते वे सिद्ध भगवान होते हैं, जिनके 13वां 14वां गुणस्थान होता है ये अरहंत भगवान होते हैं। तो फिर नहीं साहब, मैं अरहंत भगवान तो नहीं हूँ। तुम भगवान हो क्या? कि नहीं नहीं भगवान तो नहीं हूँ मैं। अपने आप को भगवान तो नहीं मानते? कि नहीं भगवान तो नहीं मानता। तो फिर इससे नीचे उतार दो थोड़ा सा, 12वां आदि कोई गुणस्थान होंगे, 12वां होगा, 11वां होगा, कहीं तो 10वां गुणस्थान, 9वां 8वां गुणस्थान। तो हमने कहा भैया ये जो 6वें गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक होते हैं ये मुनिराजों के होते हैं। 6वें से 12वें गुणस्थान ये भावलिंगी संतों के होते हैं, ये वितरागी संतों के होते हैं। तो साहब मैं नहीं हो सकता मुनि, आगे तपस्या तो करता ही हूँ। कि नहीं भैया, जिनके पीछे कमंडल होते हैं ना, जो महाव्रतधारी होते हैं उनके होते हैं 6वें गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक। कि अच्छा ये भी नहीं है मेरे, तो फिर कोई बात नहीं, आप और नीचे उतारना ही चाहते हो तो 5वां तो होगा कम से कम। क्यों साहब, 5वां गुणस्थान है या नहीं है हमारा, बोलो कैसे निर्णय करेंगे आप हमारे 5वां गुणस्थान है या नहीं है? गुणस्थान की चर्चा को पढ़ने से हमें भूमिका का पता लगता है। 6वां 7वां गुणस्थान होगा तो मुनि दशा में ही होगा, आगे बढ़ते हुए गुणस्थान मुनिराजों के गुणस्थान है, 13वां 14वां गुणस्थान अरहंत भगवान का गुणस्थान है, 5वें गुणस्थान के लिए प्रतिमाधारी श्रावक होना जरूरी है। जिसने बाहर में बुद्धि पूर्वक व्रत अंगीकार किए हो, प्रतिमाधारी हो, दूसरी प्रतिमा हो, 5वीं 7वीं प्रतिमा हो, 10वीं 11वीं प्रतिमा हो, एलक शुल्लक हो, क्या तुम्हारी ऐसी दशा है? बोले नहीं नहीं साहब, हमने व्रत तो नहीं ले रखे। अनुव्रती हो क्या? कि नहीं अनुव्रती तो नहीं हूँ, तो तुम्हारे 5वां गुणस्थान भी नहीं है। तो फिर साहब 4वां तो होगा, आप सब मना कर रहे हो, अनुव्रती तो नहीं हूँ लेकिन कम से कम अभ्यासी तो हूँ, तो 4वां गुणस्थान तो होना चाहिए। तो कहा नहीं, 4वां भी एक बार देखो, 4थे की भूमिका क्या होती है। तो जब 4थे गुणस्थान की भूमिका को हम शास्त्रों के हिसाब से देखते हैं तो हमें पता लगता है अनीति अन्याय अभक्ष्य का त्यागी, क्या बाहर में अष्टमूल गुणों का पालन करने वाला, कुदेव कुगुरु कुधर्म के सेवन का त्यागी, सच्चे देवगुरु धर्म की जिसको समझ है, दृढ़ श्रद्धा है, सात तत्व का स्वरूप जो गहराई से जानता है, उस पर श्रद्धा करता है, क्या ये सब है आपके? अभी तो अनीति अन्याय का ही ठिकाना नहीं है, अभी तो अवक्ष्य का ही ठिकाना नहीं है, खान पान का ही किसी प्रकार का कोई विचार नहीं है, तो गुणस्थान 4था कैसे हो सकता है? गुणस्थान 4थे के लिए ये सब चीजें जरूरी है। तो फिर साहब आप कुछ भी कहो, क्या आपने बहुत नीचे गिरा दिया हमारे को, अब 3रा तो कम से कम होगा, तीसरा नहीं तो दूसरे से नीचे तो मत गिराना, क्या सबसे यार लास्ट में डालोगे क्या? भैया तीसरा दूसरा गुणस्थान जो होता है वो तो जिनको 4था हो गया ना, वहां से गिरते समय होता है। तो पहले जिनके 4था हुआ हो उनके गिरते समय दूसरा तीसरा गुणस्थान संभव है। और दूसरी बात यह भी तो है कि दूसरे और तीसरे गुणस्थान का तो काल ही सीमित है, बहुत छोटा सा काल है, अंतर्मुहूर्त काल तीसरे गुणस्थान का।
अंतर्मूर्त काल दूसरे गुणस्थान का छह आवली प्रमाण उत्कृष्ट काल छह आवली एक समय खत्म बस इससे ज्यादा काल ही नहीं है। तो अब सोचिए आप अपनी भूमिका कौन सी है। तो इस गुणस्थान के प्रकरण से भूमिका का पता लगता है हम कितने पानी में हैं। ये यदि देखना हो तो गुणस्थान पढ़ो हमें पता लगेगा हम कितने पानी में हैं। हम तो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझ रहे थे हम तो अपने आप को बहुत विशेष समझ रहे थे ऐसा नहीं है भाई साहब। ये गुणस्थानों का संबंध श्रद्धा और चारित्र गुण से है। ये गुणस्थानों का संबंध श्रद्धा और चारित्र गुण की तारतम्य रूप अवस्थाओं से है। गुणस्थानों की परिभाषा देखो एक बार विषय क्लियर होते चले जाते हैं भ्रांतियां निकलती चली जाती है इन विषयों को पढ़ने से किन किन भ्रांतियों में अटके हुए हैं हम। गुणस्थान की परिभाषा क्या है। मोह और योग के निमित्त से जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण की होने वाली तारतम्य रूप अवस्था को गुणस्थान कहते हैं। अब परिभाषा तो याद है नहीं और हम सिर्फ गुणस्थान गुणस्थान देख रहे हैं और गुणस्थान वाले तलाशते रहते हैं और हमें ऐसा लगता है इनके ये गुणस्थान होगा इनके ये गुणस्थान होगा इनके तो काव्य गुणस्थान होना ही चाहिए। सम्यक दृष्टि जीव तलाश हो जरा बोलो सम्यक दृष्टि जीव मिलते हैं कि नहीं आपको। बहुत सारे समाज में बहुत सारे सम्यक दृष्टि होंगे। चलो छोड़ो किसी की बात नहीं करना हमारे को। मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ आप इस दुनिया में जिन जिन लोगों को सम्यक दृष्टि मानते हैं उनके बारे में एक बार अपने हृदय में गहराई से सोचना उन्हें सम्यक दृष्टि क्यों मानते हैं कारण क्या है। सम्यक दृष्टि तलाश ना कौन कौन सम्यक दृष्टि हो सकता है। अभी नाम नहीं लेना किसी का भी सिर्फ इतना देखना है सम्यक दृष्टि कौन। किरीट भाई आपके दिमाग में कौन कौन सम्यक दृष्टि है। तो आपको लगता है यार वो तो बहुत बड़े विद्वान है वो तो सम्यक दृष्टि हो सकते हैं और वो तो गजब प्रवचन होते हैं उनके वो तो सम्यक दृष्टि हो सकते हैं। बोलो वो तो बहुत अच्छा बोलते हैं और उनका तो आचरण भी बहुत अच्छा है वो तो सम्यक दृष्टि होगी होगी। क्या क्या लग रहा है आपको मोटा जी साहब ठीक कह रहा हूँ ऐसा ही लगता है ना अपने को। बोलो आप किन किन को सम्यक दृष्टि मानते हो। अरे साहब इतने बड़े विद्वान माने आप तो सब सम्यक दृष्टि विद्वानों में दिखते हैं सभा में सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते। जिस व्यक्ति की प्रसिद्धि ज्यादा है उस व्यक्ति के सम्यक दृष्टि होने के चांस ज्यादा है। मतलब सम्यक दर्शन का संबंध यशस्व कीर्ति कर्म प्रकृति से है। कोई व्यक्ति बोलता बहुत अच्छा है किसी का उद्बोधन बहुत अच्छा होता है भाषण बहुत अच्छा देता है समझाता बहुत अच्छा है तो वो जो समझाता है ये उसका समझाना तो भाषा वर्गना का काम है ना। ये जो कुछ भी वो बोल रहा है जो कुछ भी वो समझा रहा है ये समझाना बोलना प्रतिपादन करना ये भाषा का काम है ये वाणी का काम है। इस वाणी से गुणस्थान नहीं बदला करते क्योंकि गुणस्थान का संबंध वाणी से नहीं है गुणस्थान का संबंध श्रद्धा से है। आप कहेंगे कि साहब नहीं बोलता तो बहुत अच्छा है अकेला बोलता ही नहीं है पालन भी करता है भाई साहब आचरण भी है जीवन भी बहुत अच्छा है रात में पानी नहीं पीता बाजार का अनाप शनाप नहीं खाता मर्यादित भोजन करता है ऐसा उत्कृष्ट आचरण है। अब तो सम्यक दृष्टि मान लो क्यों अब भी सम्यक दृष्टि नहीं है। बोलता अच्छा है इससे चौथे गुणस्थान का संबंध नहीं है समझना गुणस्थान समझा रहा हूं मैं आपको गुणस्थान से वितरकता की तरफ ले जा रहा हूं। गुणस्थानों को समझने से कितनी भ्रांतियां निकलती है ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हमने ये समझा कि गुणस्थान बोलने से नहीं बदलता गुणस्थान अच्छे प्रवचनकार हो तो गुणस्थान चौथा हो इस बात की गारंटी नहीं है। बाहर में अच्छा आचरण हो तब तो गुणस्थान बढ़ना चाहिए कि नहीं बाहरी आचरण जड़ की क्रिया है उससे पहले गुणस्थान और चौथे गुणस्थान का संबंध नहीं है। बाह्य आचरण से भी गुणस्थान नहीं बदलता तो फिर साहब ज्ञान बहुत है इनका बहुत नॉलेज है उससे तो गुणस्थान इनका चौथा होगा इस बात की सिद्धि होती है। बोलते भी अच्छा है बाह्य जीवन भी बहुत अच्छा है और इनके ज्ञान का क्षयोक्षम भी बहुत अच्छा है
अब तो गुणस्थान चौथा होना चाहिए, तो कहते हैं तो भी नहीं है, क्योंकि गुणस्थान का संबंध ज्ञान से नहीं है, श्रद्धा और चारित्र से। गुणस्थान की परिभाषा है, गुणस्थान की क्या परिभाषा है बोलो? मोह और योग के निमित्त से, ये तो निमित्त, निमित्त को तो अभी एक तरफ रखो, ठीक है। श्रद्धा और चारित्र गुण की तारतम्य रूप अवस्था, इसका मतलब श्रद्धा और चारित्र गुण के अलावा गुणस्थान बनते रही है। गुणस्थान या तो श्रद्धा गुण में होंगे या चारित्र गुण के आधार पर होंगे, ज्ञान गुण के आधार पर गुणस्थान का संबंध नहीं है। और हमें जितने चौथे गुणस्थान वाले दिखते हैं, जितने सम्यक दृष्टि दिखते हैं हमारे ज्ञान में, जिनको हम सम्यक दृष्टि समझते हैं, वो सब ऐसे ही होते हैं जिनकी प्रसिद्धि ज्यादा होगी, जो विद्वान अच्छे होंगे हैं समाज में, जिनकी प्रतिष्ठा होगी, बोलो इन्हीं लोगों में दिखेंगे ना। कोई व्यक्ति कहेगा चेतन भाई सम्यक दृष्टि है, कोई व्यक्ति कहेगा डॉक्टर भारन सम्यक दृष्टि है, कोई कहेगा युगल जी सम्यक दृष्टि है, कोई कहेंगे ज्ञानचंद जी साहब सम्यक दृष्टि है, कोई कहेगा समस्त प्रकाश जी सम्यक दृष्टि है, कोई कहेंगे रविंद्र जी सम्यक दृष्टि है, बोलो मेरे को चार छह नाम जो भी आपको दिखते हैं, और बोलो और कौन कौन हो सकते हैं। अब ये भी नहीं होंगे, नहीं होंगे मैं ये नहीं कह रहा क्या, लेकिन जिस आधार पर आप सम्यक दृष्टि मान रहे हैं आपका वो आधार गलत है, मैं ये कह रहा हूं। वो सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, विद्वान भी सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, लेकिन मेरा तो ये कहना है कि सम्यक दृष्टि आप लोगों में भी हो सकते हैं। आप सम्यक दृष्टि ऐसे व्यक्ति को क्यों मानते हो जो माइक पकड़ते हो, जो माइक नहीं पकड़ते वो भी तो सम्यक दृष्टि हो सकते हैं। अरे असंख्यात तिर्यंच गति के जीव सम्यक दृष्टि हैं, असंख्यात नार की जीव सम्यक दृष्टि हैं, असंख्यात देव गति के जीव सम्यक दृष्टि हैं। बाहर में घूमता हुआ कुत्ता बिल्ली है कबूतर है वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते क्या? वो भी सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, देखने पर तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। माने गुणस्थान का संबंध किस चीज से है, यदि आप गहराई से इस विषय को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितने भ्रांति में जी रहे थे हम। ये भ्रांतियां निकलती है इन प्रकरणों को पढ़ने से, फिर एक एक गुणस्थान की चर्चा करो तब तो बहुत बातें खुल जाती है। पहले गुणस्थान वाला व्यक्ति अभी का मिथ्या दृष्टि जीव अंतर्मूर्त में सम्यक दृष्टि हो सकता है, सम्यक दृष्टि जीव अंतर्मूर्त में मिथ्या दृष्टि हो सकता है। अब नाप तो कैसे करोगे आप, इसलिए दूसरे व्यक्ति का सम्यक दृष्टि है या नहीं है, सम्यक दृष्टि है या मिथ्या दृष्टि है, इसका गुणस्थान तो पहला है, ये आप दूसरे के बारे में देखना जानना जानकारी लेना छोड़ो और अपने आप के बारे में विचार करो। दूसरे का सम्यक तो हमारे किसी काम नहीं आएगा, ये गुणस्थान दूसरों के लिए नहीं है, ये गुणस्थान अपने लिए है। और मार्मिक बात कहूं कि गुणस्थानों की चर्चा तो केवल ज्ञान गम्य है, कब बदल गया स्वयं को भी पता नहीं लगता, कब गुणस्थान पहले से चौथा हो गया, छठवा सातवा हो गया, छठवे सातवें वाले का पहला हो गया। अरे बैठे बैठे गुणस्थान बदल जाता है, बैठे बैठे नहीं चले जाते आप लोग छठवे सातवे में? उपचार से ऐसा मजाक में कहते हैं, लेकिन भैया कोई भी जो बाहर में 28 मूल गुणों का पालन करने वाले दिखाई दे रहे हैं, डायरेक्ट पहले से सातवां गुणस्थान कभी भी हो सकता है उनका, हे बुद्धि से देखने की जरूरत नहीं है। किसी व्यक्ति को आप सम्यक दृष्टि कह रहे हैं, वो व्यक्ति कभी भी सम्यक दृष्टि से मिथ्या दृष्टि हो सकता है। अरे शिरोक्षम सम्यक्त्व का तो ऐसा स्वरूप बतलाया है, दिन में 100 बार सम्यक दृष्टि से मिथ्या दृष्टि हो जाए और मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि हो जाए, आप कैसे नापोगे? किसी क्रिया से सम्यक मिथ्यात्व को नापा जाता है? हम तो इसी आधार पर नापते रहते हैं। क्रिया से सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि को नापना बंद करें और अपने आप के सम्यक्त्व को श्रद्धा के आधार पर देखें। श्रद्धा कैसी है, श्रद्धा दृढ़ है या नहीं है? अभी विषय भोगों के प्रति श्रद्धा दिखाई देती है या त्रिकाली ध्रुव के प्रति श्रद्धा दिखाई देती है? वाणी में त्रिकाली ध्रुव है और श्रद्धान में विषयों में आनंद है, बोलो कैसे सम्यक दृष्टि हो सकते है? अब फिर आप कदाचित ये बात कहो कि भैया हम तो है ना वो श्रद्धा से संबंधित हो, हमारी श्रद्धा तो है मजबूत, श्रद्धा तो दिखती नहीं है किसी को। ऐसा नहीं चलेगा। एक एक पर्याय की स्वाधीनता की सिद्धि, क्रमबद्ध पने की सिद्धि,
ये सब इन गुणस्थान प्रकरणों को जानने से पता लगता है। देखो गमना गमन देखो गुणस्थानों के तो पता लगता है अपने को, पहले से दूसरा गुणस्थान नहीं होता, पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा नहीं होता, तीसरे गुणस्थान से दूसरा नहीं होता, तीसरे गुणस्थान में मरण नहीं होता, पता है आपको? तीसरे गुणस्थान में मरण ही नहीं होता, तो ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने। अब तो तीसरे गुणस्थान में जाके रुक जाएंगे अपन, मरण को जीत लेंगे अपन। तो भैया सुनो, ये तीसरा गुणस्थान होना के दूसरा होना के पहला होना के चौथा होना ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। क्या नियम से वो तीसरा गुणस्थान अंतर्मुहूर्त बाद में बदल जाता है, ये क्रमबद्ध प्रणा है, ये वस्तु स्वरूप है। जब हम इसको वस्तु स्वरूप की अपेक्षा से देखते हैं तो सिद्धांत बन जाता है, वो वितरकता का पोषक हो जाता है, यही तो वस्तु स्वरूप है। टोडरवाल जी साहब ने नहीं लिखा, कोई ग्यारहवें गुणस्थानवर्ती होकर के भी, बोलो ग्यारहवें गुणस्थान तक चला गया, कैसे भावलिंगी संत होंगे, परिणाम कितने उज्जवल होंगे, कैसे वितरकता के परिणाम होंगे उनके, और ग्यारहवें गुणस्थान तक जाकर के भी अंतर्मुहूर्त में नीचे गिर जाए। गिरता ही है, गिर क्या जाए, नियम से गिरता है। ये स्वाधीनता ख्याल में नहीं आती हमारे को, कैसे परिणामों का उतार चढ़ाव होता है, कैसे परिणाम बदलते रहते हैं। भाई साहब ये सब परिणामों का खेल है, अपने परिणामों को संभालिए। परिणाम से ही बंध है और मोक्ष भी परिणाम से। आपके वर्तमान परिणामों को संभाल कर आपके गुणस्थान बढ़ सकते हैं और परिणाम बिगड़े और गुणस्थान गिर सकते हैं। कब गुणस्थान गिर गया पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि केवल ज्ञान गम्य सूक्ष्म विषय, गुणस्थानों के बदलने का पता नहीं लगता। इन गुणस्थानों की चर्चा तो बहुत स्थूल दृष्टि से की है भाई साहब, परिणामों के तो असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं। उन असंख्यात लोक प्रमाण परिणामों के भेदों को आचार्यों ने, वीतराई संतों ने एक क्राइटेरिया बना दिया कि इस क्राइटेरिया के आधार पर देखो तो पहला गुणस्थान, इस तरह के परिणाम हो तो दूसरा होगा, और इस तरह के परिणामों का स्तर हो तो चौथा गुणस्थान होगा। एक और मार्मिक बात कह दूं आपको परिणामों के संदर्भ में, उन परिणामों से भी आप पकड़ नहीं सकते, क्योंकि पहले गुणस्थान और चौथे गुणस्थान वाले के परिणाम दोनों एक समान भी हो सकते हैं। कैसे? गुणस्थान की अपेक्षा से नहीं, बाहर में देखने पर, लेखियाओं की अपेक्षा से। अब शास्त्र खोल करके देखते हैं तो अपने को पता लगता है कि शुक्ल लेखिया के परिणाम अच्छे दिखते हैं, कृष्ण लेखिया के परिणाम खोटे दिखते हैं। अब गुणस्थान प्रकरण में देखो आप तो आपको पता लगेगा कृष्ण लेखिया का परिणाम सम्यक दृष्टि के लिए हो सकता है और शुक्ल लेखिया का परिणाम मिथ्या दृष्टि के लिए हो सकता है। अब नाप करो कैसे करोगे, अब क्या करें बोलो? हम तो ये देख रहे हैं अरे राव कितने खोटे परिणाम है, कितने खोटे परिणाम है। अरे हो सकते हैं भाई साहब, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों के भी हो सकते हैं। अभी इसी बात को, इसी कारणानुयोग की चर्चा को समझने के लिए प्रथमानुयोग को साथ में लाओ तो बात समझ में आती है, वो लड़ाई झगड़े का परिणाम होता है कि नहीं। चौथे गुणस्थान की भूमिका में, चौथे गुणस्थान की भूमिका में लड़ने का परिणाम हो सकता है, विरोध करने का परिणाम हो सकता है, युद्ध लड़ने का परिणाम हो सकता है। ये गुणस्थान की अपेक्षा से परिणामों का अंदाजा लगे हमारे को। चौथे गुणस्थान में क्या क्या काम होते हैं आपको कुछ अंदाजा है? आपने किसी व्यक्ति को दुकान पर कुछ तूतू मैने करते हुए देखा होता, ये तो सम्यक दृष्टि बिल्कुल नहीं हो सकता। फिर भी अभी आप जिन परिणामों से सम्यक दृष्टि मान रहे थे, अभी थोड़े से परिणाम बदलते हुए दिखाई दिए तो आपने एक मिनट में उसको मिथ्या दृष्टि घोषित कर दिया। क्या है हमारी नाप बोलो? ऐसा है ना, दुकान पर देखा हमने लड़ाई झगड़ा कर रहा, अरे दुकान पे लड़ाई झगड़ा, युद्ध क्षेत्र में जाकर के लड़ाई झगड़े करे तो भी गुणस्थान चौथे से नीचे नहीं गिरे। क्या सम्यक दृष्टि जीव हो, तद्भव मोक्षगामी होवे, उसी भाव से मोक्ष जाने वाला हो, अंदर में अनंतानुमंदी न होवे, अंदर में दर्शन मोहनी नहीं होवे, दोनों का अभाव हो गया हो और फिर भी धनुष बाण चलाए, गोलियां चलाए, सम्यक दृष्टि नहीं, भरत बाहुबली दिखते हैं रामचंद्र जी जैसे नहीं दिखाई देते हैं हमारे को, ये लोग उसी भाव से मोक्ष जाने वाले हैं ना ये लोग तो, पांडव नहीं दिखते हैं हमारे को, कितने युद्ध किए उन्होंने, क्या फर्क पड़ता है उससे, सब सम्यक दृष्टि जीव थे, अनंतानुबंधी नहीं थी। आप सोचो अनंतानुबंधी कषाय किस तरह की कषाय होगी, और जो लड़ाई झगड़े की हम बात कर रहे हैं, ये लड़ाई झगड़ा होवे तो भी अनंतानुबंधी कषाय नहीं होवे। अनंतानुबंधी को क्या समझते हैं अपन? अनंतानुबंधी मतलब बहुत ज्यादा तेजी में जो कषाय होगी, ऐसा नहीं। अंदर में जो मिथ्यात्व के साथ में विपरीत परिणाम है उसका नाम अनंतानुबंधी कषाय है। मिथ्यात्व के साथ वर्तने वाली, अनंत पदार्थों के साथ में अनुबंध रूप संबंध रखने वाली जो कषाय है उसका नाम अनंतानुबंधी कषाय है। ऐसा नहीं है कि किसी ने तेजी बहुत देखी तो अनंतानुबंधी हो गई। अरे वो तेजी तो ज्ञानियों के जीवन में भी होती है जिनके जीवन में अनंतानुबंधी चली गई है। मेरा तो सिर्फ इतना कहना है कि इन गुणस्थानों को जानने से, इन गुणस्थानों को समझने से हमें अपनी भूमिका का पता लगता है, हमें दूसरों की भूमिका का पता लगता है, हमें परिणामों का पता लगता है। भूमिका अनुसार परिणाम होते हैं, इसलिए इससे ऐसा भी पता लगता है कि किसी व्यक्ति के ऊपर उंगली उठाने की जरूरत नहीं। क्यों? इसलिए जरूरत नहीं है कि भूमिका से ज्यादा गिरे परिणाम उसके हो नहीं सकते। जितने परिणाम होंगे वो परिणाम उसकी मर्यादा में रह करके ही तो होंगे। पहले गुणस्थान की भूमिका में किस तरह के परिणाम होते हैं, चौथे गुणस्थान की भूमिका में किस तरह के परिणाम होते हैं, पंचम गुणस्थान की भूमिका में किस तरह के परिणाम होते हैं, छठवें सातवें गुणस्थान की भूमिका में किस तरह के परिणाम होते हैं, आखिर ये चर्चा ही तो करुणानु योग की चर्चा है। और क्या है? भूमिका के अनुसार परिणाम, और परिणामों के अनुसार भूमिका का ज्ञान, गुणस्थानों के अनुसार परिणाम होंगे, पता लग गया हमारे को। स्वाधीनता का पता लगता है, स्वाधीन परिणमन का पता लगता है। कोई जीव छठवे गुणस्थान में आया, सातवें में आया, तो छठवे सातवें गुणस्थान में हजारों बार झूलेगा ही झूलेगा, उसे कोई बदल नहीं सकता। देखो कैसे पता लग रहा है हमारे को, इन गुणस्थानों से पता लग रहा है आप चाह करके गुणस्थान नहीं बदल सकते। पर्यायों की स्वाधीनता नहीं दिख रही है इससे, कण कण की स्वाधीनता नहीं दिखती है। एक एक पर्याय स्वतंत्र है, एक एक पर्याय स्वाधीन है, वो पर्याय तेरे कंट्रोल में नहीं है। ये जो द्रव्यानुयोग की बात है, ये बात करणानुयोग से तो सिद्ध होती है। द्रव्यानुयोग का जो ये सिद्धांत है, महासिद्धांत, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, ठीक है? एक पर्याय दूसरे पर्याय की कर्ता धर्ता नहीं है, एक पर्याय का दूसरे पर्याय से कोई संबंध नहीं है। क्या? पिछली पर्याय का आगामी पर्याय में किसी तरह का कोई रिलेशन नहीं है। ये प्राग भाव, ये प्रध्वंसा भाव, ये जो द्रव्यानुयोग के महत्वपूर्ण विषय है, मैं कहता हूं करणानुयोग के बिना इन महत्वपूर्ण सिद्धांतों को कैसे समझाएंगे हम बतला रहे हैं ना आपको। करणानुयोग के आधार पर एक समय पहले तक का मिथ्या दृष्टि जीव अनादि काल से मिथ्या दृष्टि था, अनादि काल से आज तक उसकी मिथ्यात्व पर्याय वर्त रही थी, अगले समय की पर्याय में सम्यक दर्शन हो जाता। इसका मतलब अनादि काल से चली आ रही मिथ्यात्व पर्यायों का संबंध या उनका प्रभाव उसके एक समय बाद वाली पर्याय में नहीं पड़ता। कितनी स्वाधीनता है। सम्यक दर्शन की जो पर्याय उत्पन्न हुई, उस सम्यक दर्शन की पर्याय में अभी तक पहले चलती हुई आ रही मिथ्या दर्शन की पर्यायों का कोई प्रभाव नहीं है, अप्रभावित, कोई मतलब ही नहीं है उससे। ये पर्यायों की स्वाधीनता ये कौन बतलाएगा करणानुयोग के बिना? एक समय पहले का ग्यारहवें गुणस्थान वाला व्यक्ति और अभी पहले गुणस्थान में है, कौन बतलाएगा ये स्वाधीनता? ये स्वाधीनता नहीं ख्याल में आती है हमारे भाई साहब। जिस व्यक्ति को आप गालियां दे रहे हैं वो व्यक्ति आपसे पहले भगवान बन सकता है। मारीची की अवस्था के अंदर देखते हैं तो आप अपशब्द बोलते हैं, और जब महावीर की अवस्था में देखते हैं भक्ति का भाव जागृत होता है। क्षण क्षण में परिणाम नहीं बदलते। करणानुयोग का क्या ये सिद्धांत नहीं है कि आपके परिणाम अंतर्मुहूर्त से ज्यादा शुभ नहीं रह सकते, आपके परिणाम अंतर्मुहूर्त से ज्यादा अशुभ भी नहीं रह सकते। लो कर लो पाप, कितना करोगे? अंतर्मुहूर्त से ज्यादा पाप भी नहीं कर सकता। कैसे सिद्धांत है बोलो?
अंतर्मुख से ज्यादा आप पाप नहीं कर सकते, अंतर्मुख से ज्यादा पुण्य नहीं कर सकते, अंतर्मुख से ज्यादा आप तीव्र कषाय नहीं कर सकते। मजे मनाओ आप, क्या आनंद मनाओ आप, आपकी तीव्र कषाय ज्यादा लंबे समय तक चलने वाली नहीं है। चला लो आनंदानुबंधी तीव्र कषाय, अंतर्मुख से ज्यादा चल जाए तो किसी की अंतर्मुख भी 48 मिनट नहीं है, क्षण क्षण में बदलती है। आप भले ही 50 मिनट का प्रवचन रख दो, लेकिन 48 मिनट से ज्यादा तो झुकाव में कोई दिखेगा नहीं। मैं नहीं कह रहा इसको, सिद्धांत कह रहा है, करणानुयोग की बात कह रहा हूँ। मैं तो कितनी देर का रखे पंडित जी साहब, पौन घंटे का रखे, फिर तो 45 मिनट का। अरे भैया ये जो अंतर्मूर्त में बदलने की बात कही है, ये 48 मिनट वाले अंतर्मूर्त की बात नहीं है। बैठे बैठे क्षण क्षण में परिणाम बदलते रहते हैं। बोलो कितने लोगों को पता चल रहा है कि बाहर बारिश आ रही है? ये बाहर बारिश आ रही है, आपका ये परिणाम शुभ भाव है या अशुभ भाव है? ये प्रवचन सुनते सुनते अशुभ भाव चल रहा है? मेरे को सब पता है सबके दिमाग में क्या चल रहा है। इस शुभ से अशुभ भाव में चला जाता है, अशुभ भाव से शुभ भाव में आ जाता है। बैठे बैठे हमारा उपयोग इधर उधर घूमने लग जाता है। जिनवाणी की चर्चा चलते चलते भी बीच में अशुभ भाव आ जाया करते हैं। ये शुभ से अशुभ भाव और अशुभ से शुभ भाव, ये सिद्धांत में कही है बात। जितनी सैद्धांतिक चर्चाएं हैं वो सब करणानुयोग की चर्चाएं हैं। करणानुयोग की चर्चा के बिना सिद्धांत नहीं बनता, ऐसा समझ लो आप। सिद्धांत जो कहते हैं अपन, जिसे अपन सिद्धांत कहकर के पुकारेंगे, वो करणानुयोग है। टोडरमल जी ने तो यहां तक लिखा है, आत्मा की चर्चा करे और सूक्ष्मता से आत्मा के गुण पर्यायों आदि की चर्चा करे, प्रदेश भेद आदि की चर्चा करे, बोले ये करणानुयोग है। क्या बात कर रहे हो आप? आत्मा के असंख्यात प्रदेशों की चर्चा करे, अविभागी प्रतिच्छेद तक जाए, बोलो अविभागी प्रतिच्छेद की चर्चा, प्रदेशों की चर्चा करो आप। राग के प्रदेश भिन्न है और ज्ञान के प्रदेश भिन्न है। इसको प्रयोजन की अपेक्षा से भले ही आप द्रव्यानुयोग की बात कहो, लेकिन भैया प्रदेशों की सूक्ष्मता में जाकर के चर्चा करना, ये करणानुयोग की बात है। करणानुयोग कितना उपयोगी है, करणानुयोग के बिना हम अपने परिणामों को संभालें ये बात ख्याल में नहीं आती। बदलेंगे तो तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये करणानुयोग तुझे निश्चिंत करता है। देखो हमारे मन में थोड़ा सा पाप भाव आ जाता है, हम कितने विचलित हो जाते हैं। अरे मेरे मन में कैसा भाव आ गया, मुझे ऐसा भाव नहीं आना चाहिए था, ये पाप भाव तो मेरे मन में आना ही नहीं चाहिए। मेरे मन में ऐसा कैसे आ गया कि इनका मोबाइल में उठा लेता हूँ? मेरे मन में ऐसा कैसे आ गया कि इनका पेन मैंने साइन करने के लिए लिया था, अपनी जेब में लगा लेता हूँ? तेरे मन में ऐसा भाव आ कैसे गया? और आ गया तो तू अपने आप खेल खिन्न मानता है, अपने आप के बारे में ऐसा समझता है कि मेरे मन कैसा पापी हूँ, मेरे मन में कैसा भाव आ गया। अरे भैया ये जो भाव तेरे मन में आया है ये भूमिका के अनुसार है, और क्षण मात्र के लिए आया था, अगले समय ये भाव चला जाने वाला है। उन परिणामों में अटकने की जरूरत नहीं है, अपरिणामी को देख, परिणामों में मत उलझ, अटके मत उन परिणामों में। उन परिणामों के उतार चढ़ाव में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ज्यादा, इन परिणामों का काम ही बदलना है। और बदलते हुए इन परिणामों की चर्चा में जो नहीं बदलने वाला स्वरूप अंदर में मौजूद है तो उसको देख। भावलिंगी संत भी चाह करके भी सातवें गुणस्थान में एक मर्यादित समय से ज्यादा टिक नहीं सकते, छठवें गुणस्थान में चाह करके भी नहीं टिक सकते, सातवें में नहीं टिक सकते, छठवें से सातवें में और सातवें से छठवें में ये चलता ही रहता है उनका, ऐसी स्थिति चलती। भावलिंगी संतों की बात कर रहा हूं, हम हैं कौन? मिथ्यात्व की भूमिका में या चौथे गुणस्थान की भूमिका में बैठ करके हम ये सोचे कि हम अपने परिणामों को अपने कंट्रोल में कर लेंगे। करणानुयोग ये कहता है परिणाम तेरे कंट्रोल में नहीं है, जो तेरे कंट्रोल में नहीं है उनको कंट्रोल में करना छोड़ दे, विकल्प तोड़ दे। लेकिन तेरे दिलो दिमाग में विकल्प चलता है ना इस प्रकार का, मैं इसको संभालू, मैं इसको बदलू, ऐसा परिणाम कभी कभी तो ऐसे परिणाम आते हैं अपने को कि अपन तो वितरागी हो जाएं, अपन तो सब छोड़ छाड़ देंगे। कई लोग मिलते हैं ऐसे, वही कहते पंडित जी हमारे को तो ऐसा भाव आता है सब बिजनेस दुकान सब व्यापार छोड़ करके बस इसी मार्ग में लग जाएं। तो मैं कहता हूँ कर मत लेना ऐसा, घबराओ मत। क्या इतना कैसी बात करते हो आप? हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं, इसलिए कह रहा हूँ कि आपको ये परिणाम कभी कभी आता है ना, कभी कभी ये परिणाम आता है। इसका मतलब ये है कि इससे ज्यादा समय आपका परिणाम विषय भोगों में रचे पचे रहने का भी रहता है। भाई साहब भूमिका के हिसाब से परिणाम होंगे, आपके जबरन खींचतान करने से परिणाम बदल जाएंगे ऐसा नहीं है, और जबरन बदलने की चेष्टा करना भी मत, नहीं तो पछताओगे आप। आप यदि छोड़ छाड़ करके बैठ गए, मैं आपसे पूछता हूँ, बहुत सारे लोग बंबई के यहाँ आए हुए हैं, मैं उनसे पूछता हूँ जिन जिन को ऐसा विकल्प आता है कि हम छोड़ करके इसी में लग जाएं, मैं उनसे पूछता हूँ जिस दिन आपका बिजनेस नहीं होता, जिस दिन आपका जॉब नहीं होता, जिस दिन आपकी फैक्ट्री बंद रहती है, जिस दिन आपका ऑफिस बंद रहता है, क्या उस दिन संडे के दिन छुट्टी के दिन आप दिन भर तत्वाभ्यास में लगे रहते हैं? नहीं नहीं साहब वो तो पूरा दिन ऐसे सोने में निकल जाता है, मूवी देखने चले जाते हैं, घूमने चले जाते हैं, ऐसे टाइम पास हो जाता है। तो भूल करके भी छोड़ छाड़ मत देना, तुझे समय मिलेगा तो क्या करेगा बता? ये काम करेगा जब तेरे को समय मिलता हो, और जैसे ही समय मिलता हो तेरा उपयोग तत्वाभ्यास के लिए दौड़ता हो। थोड़ा सा समय मिला और जिनवाणी के अभ्यास में तेरा उपयोग दौड़ता है, और तत्वाभ्यास करने के लिए अभ्यास करने के लिए तेरा समय कम पड़ता है, तो बिजनेस को कम करना। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप बिजनेस छोड़ो मत, छोड़ने योग्य ही है वो, कोई करने योग्य चीज थोड़ी नहीं है। विषय कचाईयों में राग रंग में उलझे रहने का काम नहीं है, छोड़ने योग्य ही है, लेकिन कब छोड़ना? आपका समय यदि तत्वाभ्यास के लिए वस्तु स्वरूप के विचार के लिए कम पड़ता हो, और आपका व्यापार बिजनेस आदि उसमें बाधक बनते हो, तो आप उसे कम करके, छोड़ना नहीं सर्वथा भी, उसे कम करके समय को इधर लगाना। लेकिन मैं जानता हूं ना, ये तो कभी कभी शमशानी बैराग के जैसा उछाल आता है परिणामों में, लेना देना कुछ नहीं है। दो चार दिन के लिए, ये साल में दो चार बार जब जब शिविर लगा लेते हैं यहाँ आ जाते हैं, और परिणाम ऐसे भीग जाते हैं कि ऐसा लगता है कि यहीं रह जाएं। रह मत जाना, चार दिन बाद में कुछ नहीं मिलेगा। दिन में तीन टाइम जो स्वाध्याय चलता है, हेमचंद जी साहब का चलता है, अभय जी भाई साहब का चलता है, गुरुदेव की सीढ़ी, उसने करना तो अपने आप ही पड़ेगा भाई साहब, क्या कोई नहीं करा सकता है। माहौल की उठापटक को देखकर या आयोजन को देखकर प्रभावित होने की जरूरत नहीं है, अंदर में परिणाम कैसे बदले या नहीं वो देखने की जरूरत है। और अंतरंग परिणामों को पकड़ने की बात करता है करणानुयोग, क्रिया परिणाम अभिप्राय, तीन चीजें। क्रिया को देखता है चरणानुयोग, चरणानुयोग क्रिया देखता है, आचरण देखता है, कैसे खाते पीते हैं, कैसे उठते बैठते हैं, कैसे चलते हैं, क्या होता है इनका बात, वो चरणानुयोग क्रिया देखता है। परिणामों को देखता है करणानुयोग, और द्रव्यानुयोग बात करता है अभिप्राय की, क्रिया परिणाम अभिप्राय, रवि जी की पुस्तक। क्रिया चरणानुयोग के हिसाब से, परिणाम करणानुयोग देखता है पकड़ता है, और अभिप्राय पकड़ने की बात करता है द्रव्यानुयोग। अभिप्राय अभी आपके पकड़ने आएगा नहीं, इसलिए करणानुयोग से परिणामों की बात करो। करणानुयोग की बात कर रहा हूँ, अभिप्राय तो पकड़ने आता नहीं है हमारे, तो कोई बात नहीं, अपने परिणामों को देखो, वो परिणाम आपको कैसे दिखेंगे करणानुयोग से। और भूमिका को देखो, अपने स्तर को देखो, अपने लेवल को देखो, गुणस्थान कौन सा है तुम्हारा, पहला गुणस्थान है कि चौदहवा गुणस्थान है, छठवें सातवां गुणस्थान है कि चौथा गुणस्थान है। मैं नहीं कहना चाहता किसी को मिथ्यादृष्टि, क्योंकि मैं तो साल भर पहले आया था, तो मुझे ऐसा आश्वासन दिया था सबने कि आप अगली बार आओगे तब तक तो सम्यक दर्शन ले लेंगे। तो बहुत तो हो गए होंगे सम्यक दृष्टि, क्योंकि पहले गुणस्थान से चौथा गुणस्थान आने में देरी कितनी लगती है। करणानुयोग तो ये कहता है पहले से चौथे में आने में एक समय लगता है, और एक समय कितना बड़ा होता है कि सेकंड के असंख्यात वे भाग होता है,
एक सेकंड में असंख्यात समय हो जाते हैं। तो बोलो एक साल में भी नहीं हुआ होगा, अभी दिसंबर में आया था पिछले साल, क्या नवंबर चल रहा है, समाप्ति की ओर है, नहीं हुआ पहले से चौथा गुणस्थान। कहना मत किसी को, और कोई कह देवे तो उसको सुनकर के उसकी मजाक मत बनाना। क्या कोई व्यक्ति अपने आप को सम्यक दृष्टि कहता हो तो उसे मिथ्या दृष्टि घोषित करने की कोशिश मत करना। ठीक है भैया, हो सकते, हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन आपका सम्यक तो हमारे किसी काम का नहीं है। अरे सम्यक तो की बात तो छोड़ो, जिनेंद्र भगवान की वीतरागता भी हमारे किसी काम की नहीं है, उनकी वीतरागता सर्वज्ञता हमारे किसी काम की नहीं है, लेकिन वीतरागियों की जो वीतरागता सर्वज्ञता है अरहंत परमात्मा की, उस सर्वज्ञता के आधार पर बतलाए गए जो ये विषय है, ये विषय हमारे वीतरागता के पोषक हो सकते हैं। गुणस्थानों की चर्चा पढ़ करके, इस करणानुयोग की चर्चा को पढ़ करके, परिणामों में जो निर्मलता आती है, ये सातिशय पुण्य का बंधन करती है। प्रथमानुयोग की चर्चा को सुनते समय उपयोग इधर उधर जा सकता है, चरणानुयोग की चर्चाओं में उपयोग इधर उधर भ्रमित हो सकता है, द्रव्यानुयोग की चर्चाएं, अरे यार रोज रोज वही तो बात कहते हो, शरीर अलग है आत्मा अलग है, लेकिन करणानुयोग की चर्चा को पढ़ने सुनने में आपके उपयोग की विशेष एकाग्रता बनती है, इसलिए साथी से पुण्य बंध का कारण बनता है ये प्रथम। ये करणानुयोग की चर्चा, इस करणानुयोग को साधारण नहीं समझे, इस करणानुयोग को उपयोगी समझे, वीतरागता का पोषक समझे, क्योंकि चारों अनुयोगों में से एक भी गया तो सब गए, एक की अश्रद्धा माने सब की अश्रद्धा। ऐसा नहीं है कि सब तीन अनुयोगों पर तो श्रद्धा रखें, या द्रव्यानुयोग पर तो श्रद्धा रखें और पर नहीं रखें, ऐसा नहीं चलेगा। माँ है ना, तो श्रद्धा आपको पूरी रखनी पड़ेगी, कोई बात सच्ची और कोई बात झूठी ऐसा नहीं होता है, सारी बातें सच्ची है, क्योंकि वीतरागी जिनेंद्र देव से निकली हुई है ये बात, इसलिए वीतरागी जिनेंद्र देव द्वारा कही गई ये बात, जो जनवाणी की चर्चा है, जो करणानुयोग की चर्चा है, जो वस्तु स्वरूप की चर्चा है, जो वेद विज्ञान और हमारी मान्यता को दृढ़ करने के लिए है, हमारी श्रद्धा को मजबूत करने के लिए है, इन करणानुयोग के विषयों की हम दृढ़ता से श्रद्धा करें और जीवन में वीतरागता को प्रकट करें, परिणामों में वीतरागता लाएं, अपने परिणामों को संभालें और परिणामों को अशुभ से बदल कर शुभ की तरफ चलते हुए शुद्धोपयोग की ओर अग्रसर करें, इसी भावना से मैं बात को विराम देता हूं।